प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, ये है रेडियो प्लेबैक इंडिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है, जहां पे आपसे मुखातिब है ये आपका दोस्त आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं फिल्म और संगीत जगत से जुड़े हुए कलाकारों से, तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक उभरते हुए गीतकार हैं जिनका नाम है आदित्य शर्मा। इस साल प्रदर्शित हुई दो बड़ी फिल्में यानी बार बार देखो और शिवाय में इन्होंने गीत लिखे हैं। तो आदित्य बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर।
बहुत बहुत शुक्रिया सजीव जी मुझे इस शो पे बुलाने के लिए अपने साथ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने साथ इस शो पे बुलाया।
शुक्रिया आदित्य। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि आपका लेखन का और संगीत का ये जो सफर है ये कब और कैसे शुरू हुआ?
लिखना मैंने शुरू किया था जब मैं 11th क्लास में था। मेरे एक फ्रेंड थे विकास मन्हास, वो लिखते थे और उन्होंने मुझे इंस्पायर करा, उनकी कुछ राइटिंग्स पढ़ी, उनसे मैं इंस्पायर हुआ और फिर तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो कुछ कविताएं, छोटी छोटी पोएम्स, नज़में ऐसे शुरू करा, फिर कॉलेज में पहुँच के सॉन्ग राइटिंग की तरफ गया, ऐसे ऐसे मेरी शुरुआत हुई।
ओके, तो आदित्य आप मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते हैं?
जी मैं जम्मू से हूँ, मैं यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ, पढ़ाई यहीं पे हुई, अभी भी मैं जम्मू में ही रहता हूँ।
जी तो जम्मू में रहते हुए आपने गीत लिखने तो शुरू किए, पर कभी लगता था कि बॉलीवुड बहुत दूर है या फिर ये जो सपना है कि बॉलीवुड में जाकर फिल्मों के लिए गीत लिखना है ये कब जगा आपके जहन में?
जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कॉलेज टाइम पे सॉन्ग्स लिखना शुरू करा, तब कुछ ऐसा ख्याल नहीं था कि बॉलीवुड में जाऊंगा या फिल्म्स के लिए सॉन्ग्स लिखूंगा, तब कुछ इंडिविजुअल बैंड्स की तरफ ही मेरा रुख था, हम खुद भी अपना एक बैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे। बॉलीवुड की तरफ मैं दिल्ली में एक कोर्स करने गया था, मैं वहाँ पढ़ रहा था, वहीं पे मैं जसलीन रॉयल से मिला और उनको मैंने अपने सॉन्ग्स दिखाए, उनको अच्छे लगे और तब मुझे पता नहीं था कि वो भी बॉलीवुड में जा रहे हैं, तो हमने साथ में काम करने की सोची और फिर धीरे धीरे काम किया, धीरे धीरे उनका रुख बॉलीवुड की तरफ हुआ और फिर मैं भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड पहुँच गया।
जी आपके दोनों ही गीत जसलीन रॉयल के साथ हैं और एक बहुत ही अलग तरह की आवाज़ है जसलीन की, बहुत मासूम सी बच्चों सी आवाज़ है और बहुत प्यारी है और आजकल बहुत पसंद भी की जा रही है, तो थोड़ा सा जसलीन के बारे में हमें बताइए कि वो किस तरह के कलाकार हैं और उनसे आपका जो रिश्ता रहा है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए।
जसलीन एज ए कम्पोजर बहुत अलग है बाकी लोगों से जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका तरीका थोड़ा अलग है। मैं और वो ज़्यादातर जब सॉन्ग्स बना रहे होते हैं तो हम जैम जैसा कर रहे होते हैं, रियल लाइफ इंसिडेंसेस डिस्कस कर रहे होते हैं थीम्स के ऊपर जिनके ऊपर हमें सॉन्ग्स बनाना, वैसे ही करते करते धुन आ जाती है, वैसे ही लिरिक्स बनने लग पड़ते हैं, तो वो काफ़ी एक म्यूचुअल जैमिंग सेशन जैसा रहता है जो मैं जसलीन के साथ काम करता हूँ।
ग्रेट। अच्छा बार बार देखो में जो आपका गाना आया था नच दे नहीं सारे, वो एक बड़ा ब्रेक कहा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी जो बैनर है उसकी फिल्म थी वो, ये शायद आपका पहला गाना था, तो वो अनुभव कैसा रहा पहले गाने का आपका, मतलब ये जो गाना है जसलीन के साथ जो आपका आया था इसकी जरा कहानी हमें बताइए हमारे श्रोताओं को।
नच दे नहीं सारे के साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, तो नच दे नहीं सारे बार बार देखो में थी और धर्मा और एक्सेल दोनों मिलके इस मूवी को बना रहे थे, तो दोनों ही बड़े बड़े बैनर थे हमारे लिए, तो मैं और जसलीन के हमारे पास एक ब्रीफ आया था वेडिंग सॉन्ग का लेके, तो हमने कोशिश करी कि जैसा पंजाबी वेडिंग सॉन्ग्स में होता है वैसा कुछ करें लेकिन थोड़ा हटके, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लिरिक्स में टीजिंग और ऐसे एलिमेंट्स फनी एलिमेंट्स डालने की कोशिश करी, क्योंकि जितने फोक सॉन्ग्स पंजाबी हमारी फैमिलीज में होते हैं उन सब में ज़्यादातर लड़की को लड़की वाले टीज करें, लड़की वालों को लड़के वाले टीज करें, तो हमारी कोशिश कुछ ऐसी थी कि वैसा ही कुछ फनी सा प्रोडक्ट निकल के आए, फिर सॉन्ग बन गया, उनको सुनाया, उनको अच्छा लगा, थोड़ी सी चेंजेस थी वो हमने करी और फाइनली वो बार बार देखो मैं आ गया और काफी अच्छा लगा लोगों को।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने इसमें प्रयोग किए और बहुत पुराने पुराने जो बोलियां हैं वो सब आपने इस्तेमाल करी इसके अंदर जो बहुत सुनने में साउंडिंग वेरी गुड। लेकिन ये जो गाना था इसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो शायद आपके लिए भी शायद पहली रिकॉर्डिंग रही होगी, तो वो रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए जो अनुभव थे वो भी थोड़ा सा बताइए।
एक्चुअली मैं इससे पहले भी एक दो सॉन्ग्स हमने करे थे जो एक दो फिल्मों में आने हैं जो कि अभी तक आई नहीं है, पर हाँ इससे जुड़ी हुई बातें थोड़ी अलग तो थी क्योंकि बड़े बैनर की मूवी थी तो थोड़े अलग एक्सपीरियंसेस थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में काफ़ी अच्छा माहौल रहता था, सिंगर्स आते थे, जैम कर रहे होते थे जसलीन के साथ, थोड़ी चेंजेस और कुछ कुछ तो वो सब कुछ नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मैंने वैसी चीज़ें देखी नहीं थी पहले कभी होती, तो उससे काफ़ी कुछ अच्छी मेमोरीज मेरे साथ जुड़ गई हुई हैं इस सॉन्ग को लेके, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस जुड़े इस सॉन्ग को लेके।
ओके आदित्य, तो हम एक सॉन्ग ब्रेक लेते हैं और यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं और उसके बाद मैं लौटता हूँ आपसे, बातचीत जारी रखते हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल।
मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीट है, वायरल हो गया ये ट्वीट
पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे
दोस्तों। ये मस्ती भरा गीत था फिल्म बार बार देखो का, जिसे लिखा है आदित्य शर्मा ने, जो कि एक उभरते हुए गीतकार हैं और आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये रेडियो प्लेबैक इंडिया है और कार्यक्रम है एक मुलाकात जरूरी है। तो आदित्य लौटते हैं आपकी तरफ, ये बताइए कि जब आप ये सब काम कर रहे थे लेखन का और संगीत से जुड़े हुए काम कर रहे थे, तो कभी आपके परिवार वालों को इन सब चीजों से कोई आपत्ति रही या कभी उन्होंने मना किया कि ये लाइन जो है थोड़ा इनसिक्योर है, आप किसी और काम की तरफ देखें? तो थोड़ा सा बताइए कि आपका पेरेंटल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट किस तरह का रहा?
मेरे घर वालों को कभी आपत्ति तो नहीं हुई क्योंकि मैंने पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं, साथ साथ ही पढ़ता रहा मैं। जब ये सब कुछ हो रहा था तब कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बड़ा सरियल सा लग रहा था। तो मैं साथ साथ अपने काम पर भी ध्यान दे रहा था, साथ साथ लिरिक्स भी लिख रहा था, तो उनको कोई परेशानी या आपत्ति तो नहीं हुई, सपोर्टिव ही रहे अभी तक और आगे भी शायद रहेंगी।
जी आदित्य बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहता था कि जैसे आपकी फिल्म आई थी बार बार देखो, बहुत अलग तरह का टॉपिक था, एक सब्जेक्ट अलग तरह का था, तो इस तरह की फिल्में आजकल बॉलीवुड में बहुत बन रही हैं जो लीक से थोड़ी सी हटकर होती हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि ये गीतकारों के लिए एक अच्छे संकेत हैं क्योंकि उनको बहुत अलग अलग तरह की सिचुएशंस पर काम करने का मौका मिल जाता है?
जी बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल की जो फिल्में बन रही हैं बॉलीवुड में वो काफ़ी अलग अलग रियाम्स को हम ढूंढ रहे हैं, काफ़ी अलग अलग तरह की कहानियां सामने आ रही हैं, जिससे फिल्म पे काम करने वालों को काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। शिवाय और बार बार देखो दोनों अलग अलग तरह की फिल्में थी, तो अलग अलग तरह की कहानियों पर अलग अलग तरह के गाने लिखने का मौका मिला, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ायदा हम जैसे लोगों को हो रहा है जो कि क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि थोड़े नई नई अपॉर्चुनिटीज मिले, नए नए तरह का काम हो, पिछला काम नए काम से जुड़ता ना हो। काफी कुछ सेम भी है बट धीरे धीरे बदल रहा है और मैं होपफुल हूँ कि ऐसी चेंजेस आती रहेंगी।
अच्छा आदित्य आपने बताया कि आपने शुरुआत करी काफी सारे बैंड्स वगैरह के साथ काम करते हुए, तो कौन से बैंड्स थे जिनके साथ आपने काम किए और किस तरह के गाने आपने लिखे? अगर मेरे ख्याल से आप थोड़ा गाते भी हैं तो कुछ अगर गा के सुना सकें तो बहुत अच्छा रहेगा।
जी नहीं मैं गाता तो नहीं हूँ और जिन बैंड्स के साथ मैं बात कर रहा था उनके साथ कभी काम बन नहीं पाया मैंने, हम कहीं पे उनको मेरे लिरिक्स पसंद नहीं आए, कहीं पे मुझे उनका म्यूजिक पसंद नहीं आया, तो मैंने तब मेरे पास कोई और तरीका नहीं था अपने सॉन्ग्स बाहर निकालने का, तो मैं बैंड्स को अप्रोच कर रहा था और कभी कुछ उभर के बाहर आ नहीं पाया। बस वही सब कुछ साथ लेके मैं आगे बढ़ा जो मेरे सॉन्ग से पहले के। ज़्यादातर जो गाने तब मैं लिख रहा था वो रेबल से रिलेटेड थे, कुछ फिलॉसफी से रिलेटेड थे, और बाद में भी आगे चल के कुछ सॉन्ग्स वैसे ही थे जो मैंने जसलीन के साथ स्टार्टिंग में करे, जो कि अभी रिलीज़ होंगे, सबको देखने को सुनने को मिलेंगे वैसे सॉन्ग्स जो कि मैं तब लिखा करता था जब मैं बैंड्स के लिए ट्राई कर रहा था।
जी तो कुछ अपना लिखा हुआ सुना तो दीजिए।
ये रातें रिप्राइज वर्जन के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डर हो जो कोई मुझको कभी, ढांप लेते हो खुद में कहीं, सर्दी में ठहरते हाथों को मेरे, तापते फूक के सांसों से ही, नींदें टूटी जो रातों में मेरी, जागते हो तुम भी मेरे साथ में ही, फिक्रों को मेरी भी ना फिक्र कोई, बस तुम हो जो संग में मेरे ही, है कैसा ये जहां रुकी जिंदगी रवा, एक मैं हूं और एक तू है बस यहां।
वाह आदित्य, बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं इस गीत के, और मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है, और इस फिल्म का, इस एल्बम का मेरा सबसे फेवरेट गीत यही है इनफैक्ट। तो इसी फिल्म पर मैं आता हूँ अब, शिवाय जो आपकी फिल्म आई है ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है, और ये कैसे संभव हुआ कि आपको ये फिल्म मिली, और कैसे ये गीत, जो सिचुएशन थी बहुत ही प्यारी सिचुएशन थी, एक फादर और बच्ची का जो रिलेशनशिप है वो इस गाने के थ्रू निकल के आया है, तो कैसा आपको महसूस हुआ जब आपको ये सिचुएशन मिली, और कैसे इस प्रोसेस कैसा रहा इस गाने को बनाने का?
जसलीन को अजय देवगन फिल्म से फोन आया था, वहाँ पे गए और उन्होंने अपने कुछ सॉन्ग सुनाए उनको, जो अजय सर को शायद बहुत अच्छे लगे क्योंकि फिर उन्होंने इतनी प्यारी सिचुएशन उनको दी। तो फिर जसलीन और मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी एक सिचुएशन है, उस पर हमें सॉन्ग लिखना है। तो हम बैठे और रातें का पहला वर्जन हमने कुछ दिनों में तैयार कर लिया और उनको सुनाया, कुछ छोटी मोटी चेंजेस थी जो कि बाद में हम धीरे धीरे करते रहे, और जब ये सॉन्ग एज ए होल बन गया तो हमें पता चला कि एक रिप्राइज वर्जन भी बनाना है जिसपे थोड़ी ज़्यादा शब्दों की मेहनत लगी, और मैंने कोशिश करा उसको और स्वीटर बनाने की, और फाइनली वो प्रोडक्ट आपके सामने है।
जी याद देते। अच्छा जसलीन के अलावा और किन किन संगीतकारों के साथ काम कर रहे हैं आप?
जी मेरे एक फ्रेंड हैं दिल्ली के, रजत नागपाल, उनके साथ मेरे कुछ सॉन्ग्स अगले साल आ जाएंगे, एक फिल्म है जो हम साथ में कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और लोग हैं इनके साथ बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे बात चल रही है, तो अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, बट धीरे धीरे काम चल रहा है।
बहुत बढ़िया आदित्य। अच्छा ये बताइए कि हमारे फिल्मी गीतकारों में, या कहिए कि हिंदी कवियों में या उर्दू शायरों में, आपके सबसे पसंदीदा कौन से हैं, जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं?
जी मैं बहुत सारे कवियों और शायरों से प्रभावित हूँ। मैंने मिर्ज़ा गालिब को बहुत पढ़ा है, गुलजार साहब को बहुत पढ़ा है, राहत इंदौरी साहब को बहुत पढ़ा है, विनोद कुमार शुक्ल इस समय के मेरे सबसे पसंदीदा कवि हैं। तो बहुत सारी कवित्रियाँ, महादेवी वर्मा जी को बहुत पढ़ा है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो कविताएं, शायरी मैंने सीखी है वो इन सब लोगों की शायरी से ही सीखी है, इन सब की पोइट्री पढ़ पढ़ के। जॉन कीट्स को बहुत पढ़ा है, तो उससे ही मैं शायद आज जो बनाऊँ वो बनाऊँ।
जी आदित्य, तो आजकल के जो गीतकार हैं जैसे अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, इरशाद कामिल, काफ़ी एस्टेब्लिश जो गीतकार हैं, इनका काम लगातार आता रहता है, और इनको सुनकर, इनको पढ़कर आपको कभी लगता है कि काफ़ी कंपटीशन है और अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है, और क्या क्या आगे सपने लेके आप चल रहे हैं इंडस्ट्री में?
जी कंपटीशन तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके नाम आपने लिए, इनके गाने सुनते हैं, मेरे ख्याल से इन्हीं को सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। देव डी के गाने हो गए, स्वानंद किरकिरे जी के गाने हो गए, इरशाद कामिल जी के गाने हो गए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। मैं खुद तो बस अपना काम करूँगा जी, जो मेरे अंदर की गूंज है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और देखते हैं आगे क्या होता है।
ओके आदित्य, तो जैसा कि आपने बताया कि आप अभी भी जम्मू में हैं, नियर फ्यूचर कहीं मुंबई शिफ्ट होने का प्लान है अभी?
जी मैं होमसिक सा हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है जम्मू में। मैं मुंबई आता रहता हूँ, काम करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ जम्मू। मेरे लिए अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, अभी तक तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कि ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, फिलहाल तो नहीं है कोई प्लान।
जी आदित्य, लेकिन हम लोग दुआ करेंगे कि आपको इतना काम मिले कि आप जल्दी ही आप संभाल ना पाएं यहाँ पे जम्मू में रहकर और मुंबई शिफ्ट हो जाएं, ताकि हमें आपका बहुत सारा लिखा हुआ सुनने को मिले, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। आपने समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सजीव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके शो के लिए।
थैंक यू आदित्य, तो दोस्तों आज की मुलाकात बस इतनी ही। आज के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ आदित्य शर्मा जो कि हमारे आज के मेहमान थे उनके लिखे हुए इस गीत के साथ जो फिल्म शिवाय में इस्तेमाल हुआ था और गीत है रातें। सुनिए, एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
डरो जो कोई मुझको कभी ढांप लेते हो खुद में कहीं सर्दी में ठहरते हाथों को मेरे तापते भूख के सांसों से ही नींद।